एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में स्वागत है। आज हम 20वीं सदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रांसीसी इतिहासकार की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरेंगे। एक ऐसा नाम जिन्होंने सचमुच इतिहास को देखने का हमारा नजरिया, हमारा चश्मा ही बदल दिया, जिन्होंने हमें सिखाया कि इतिहास बस राजा रानी, लड़ाइयां और तारीखें नहीं हैं।
आप फर्नान ब्रॉडल की बात कर रहे हैं ना, 1902 से 1985 तक।
और हाँ, उनका असर इतिहास लेखन पर वाकई बहुत गहरा रहा है। उन्होंने तो हमें उन धीमी, गहरी, कभी कभी तो लगभग अदृश्य सी लगने वाली ताकतों पर ध्यान देना सिखाया जो समाज को असल में आकार देती हैं।
जैसे कि किन ताकतों की बात कर रहे हैं हम?
जैसे भूगोल, जलवायु, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की आदतें, हमारा खान पान, रहन सहन, ये सब। बिल्कुल। तो आज हम उन्हीं फर्नांडो ब्रॉडल के जीवन और उनके, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास उनकी जीवनी और उनके जो मुख्य काम हैं उन पर आधारित कुछ जानकारी है। हमारा मकसद ये जानना है कि ब्रॉडल ने इतिहास को देखा कैसे और क्यों उनके विचार आज भी इतने अहम लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये विचार यात्रा।
हाँ, और ब्रॉडल की सबसे बड़ी देन शायद यही है कि उन्होंने उस पारंपरिक इतिहास को चुनौती दी जिसे वो खुद घटना प्रधान इतिहास या इस्थ्वा एवनमेंसिया कहते थे।
अच्छा, घटना प्रधान इतिहास।
हाँ, मतलब वो इतिहास जो सिर्फ बड़ी बड़ी घटनाओं पर फोकस करता है, कौन राजा बना, कौन सी लड़ाई हुई, कौन सी संधि हुई, जो मशहूर लोग हैं बस उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है।
हाँ, समझ गया। जैसे अखबार की हेडलाइंस होती है, आज ये हुआ कल वो।
बिल्कुल, ब्रॉडल ने कहा कि ये तो बस सतह की हलचल है, पानी के ऊपर का झाग है, असली कहानी तो नीचे बह रही है।
बिल्कुल सही। और इसी सोच से निकली उनकी वो सबसे मशहूर अवधारणा दीर्घ अवधि, यानी ला लोंग दूरे, ला लोंग ड्यूरे। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, असल में ये है क्या?
देखिए, ला लोंग ड्यूरे का मतलब है इतिहास की वो सबसे धीमी, सबसे गहरी परत। वो संरचनाएं जो सदियों, हजारों सालों तक लगभग स्थिर सी रहती हैं। जैसे सोचिए भूगोल के बारे में, पहाड़, नदियां, समुद्र, जलवायु, ये चीजें इंसानी पीढ़ियों के हिसाब से तो लगभग बदलती ही नहीं है, है ना?
हाँ, सही बात है।
पर ये हमारे जीवन और समाज पर बहुत गहरा असर डालती हैं। इसी तरह हमारी जो गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक आदतें हैं, हमारे सोचने के तरीके हैं, जिन्हें मेंटालिटीज कहा जाता है, ये सब भी लॉन्ग ड्यूरे का हिस्सा हैं। ब्रॉडल का मानना था कि इतिहास को सही मायने में समझने के लिए इन धीमी गतियों को पकड़ना जरूरी है।
ये तो दिलचस्प है। मतलब इतिहास सिर्फ एक तेज दौड़ नहीं, बल्कि एक बहुत धीमी चाल भी है, और शायद वो धीमी चाल ज्यादा मायने रखती है
काफी हद तक।
तो क्या उस समय फ्रांस में, जब ब्रॉडल ये सब कह रहे थे, इतिहास को ऐसे ही देखा जाता था या ये बिल्कुल नई बात थी?
नहीं, ब्रॉडल बिल्कुल नई जमीन तैयार कर रहे थे। जब वो पढ़ रहे थे, अपना करियर शुरू कर रहे थे, तब फ्रांस में पॉजिटिविस्ट इतिहास का दबदबा था।
पॉजिटिविस्ट?
हाँ, मतलब वो इतिहासकार जो सिर्फ दस्तावेजों और राजनीतिक घटनाओं को ही असली इतिहास मानते थे। सोर्बोन विश्वविद्यालय में लैंगलॉयस और सेग्नोबोस जैसे बड़े नाम थे जो इसी तरह के इतिहास पर जोर देते थे, एकदम तथ्यों पर आधारित वस्तुनिष्ठ इतिहास।
लेकिन फिर वो एनाल्स स्कूल आया है ना? हाँ, मैंने मार्क ब्लॉक और लूसियन फेब्रे का नाम सुना है इसके संदर्भ में।
हाँ, वही 1929 में मार्क ब्लॉक और लूसियन फेब्रे ने एनाल्स डी हिस्टोरी इकोनॉमिक एट सोशल नाम की एक पत्रिका शुरू की। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, बौद्धिक आंदोलन था। उन्होंने कहा कि भाई, इतिहास सिर्फ राजनीति क्यों हो, इसमें अर्थव्यवस्था, समाज, भूगोल, मनोविज्ञान, सब कुछ शामिल होना चाहिए। वे समग्र इतिहास यानी हिस्टोरी तोताल की बात कर रहे थे, इतिहास को उसकी पूरी जटिलता में समझना।
अच्छा।
और फर्नान ब्रमिन इसी अनाल स्कूल की दूसरी पीढ़ी के सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली चेहरे बने। फब्रे उनके गुरु जैसे थे।
और उस दौर की जो बड़ी घटनाएं थीं, दो विश्व युद्ध हुए, महामंदी आई, उपनिवेशवाद खत्म हो रहा था, इन सब चीजों ने भी तो उनकी सोच पर असर डाला होगा।
जाहिर है, बिल्कुल डाला होगा।
शायद इन्हीं वजहों से उन्हें लगा होगा कि सिर्फ राजनीतिक घटनाओं को देखने से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी है जो समाज को चला रहा है।
निश्चित रूप से इन बड़ी उथल पुथल वाली घटनाओं ने शायद ये दिखाया कि समाज में कितनी गहरी संरचनात्मक ताकतें काम कर रही हैं, और जब तक आप उन ताकतों को नहीं समझेंगे, आप इन बड़ी घटनाओं को भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। ब्रॉडल उस समय के पेरिस के बौद्धिक माहौल में भी एक अलग आवाज थे। एक तरफ सार्थ का अस्तित्ववाद था, दूसरी तरफ लेवी स्ट्रॉस का संरचनावाद, और ब्रॉडल अपनी अलग राह बना रहे थे जो संरचनाओं और लंबी अवधि की प्रक्रियाओं पर केंद्रित थी।
चलिए थोड़ा ब्रॉडलर के शुरुआती जीवन पर भी नजर डालते हैं। उनके बचपन या पढ़ाई के दिनों में ऐसा क्या था जिसने उनके इस खास नजरिए की नींव रखी हो?
हाँ, ये जानना भी दिलचस्प है। उनका जन्म फ्रांस के लॉरेन क्षेत्र के एक छोटे से गांव लुमेविल ऑन रॉयस में हुआ था। पिता गणित के शिक्षक थे।
अच्छा, गणित के शिक्षक।
हाँ, तो शायद वहां से उन्हें संरचनाओं और पैटर्न को देखने की एक विश्लेषणात्मक दृष्टि मिली हो। और क्योंकि वो ग्रामीण माहौल में पले बढ़े, तो उन्होंने खेती किसानी वाली जिंदगी की धीमी लय, मौसम का चक्र, अनाज की कीमतों का घटना बढ़ना, इन सब भौतिक चीजों के महत्व को बहुत करीब से महसूस किया।
ये बात उनके बाद के काम में दिखती भी है, जहां वो भौतिक संस्कृति पर इतना जोर दे रहे हैं।
बिल्कुल। फिर उनकी पढ़ाई पेरिस के मशहूर सोरबोन विश्वविद्यालय में हुई, लेकिन जैसा आपने कहा, वो वहां पढ़ाए जा रहे पारंपरिक इतिहास से कुछ खास खुश नहीं थे। उन्हें वो बहुत सीमित लगता था।
और पढ़ाई के बाद?
पढ़ाई के बाद का उनका अनुभव शायद ज्यादा निर्णायक रहा। 1923 से 1932 तक, करीब 10 साल, उन्होंने अल्जीरिया में पढ़ाया, जो उस समय फ्रांस का उपनिवेश था।
अल्जीरिया में, भूमध्य सागर की दूसरी तरफ?
हाँ, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने भूमध्य सागर को यूरोप के किनारे से नहीं, बल्कि उसके दक्षिणी तट से देखा, महसूस किया। इससे उन्हें यूरोपीय और अफ्रीकी सभ्यताओं के बीच के जटिल लेन देन की समझ मिली। भूमध्य सागर उनके लिए सिर्फ पानी का एक बड़ा विस्तार नहीं रहा, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता सक्रिय किरदार बन गया।
और फिर उनकी मुलाकात लूसियन फेब्रे से हुई ब्राजील में।
जी, 1935-37 के दौरान फेब्रे ने ब्रॉडल की प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया और उन्हें भूमध्य सागर पर ही अपनी डॉक्टरेट थीसिस लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। फेब्रे का मार्गदर्शन उनके लिए बहुत अहम था।
लेकिन फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा नाटकीय मोड़ आया। वो युद्ध बंदी बना लिए गए थे।
हाँ, ये उनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर तो था ही, लेकिन शायद बौद्धिक रूप से सबसे ज्यादा उर्वर भी साबित हुआ। वो फ्रांसीसी सेना में लेफ्टिनेंट थे और 1940 में उन्हें जर्मनों ने पकड़ लिया। उन्होंने करीब 5 साल जर्मनी के युद्ध बंदी शिविरों, POW कैंप्स में गुजारे, ज्यादातर समय ल्यूबेक के पास एक कैंप में।
और ये अविश्वसनीय सी बात सुनने में आती है कि वहीं उस कैंप में उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब का पहला ड्राफ्ट लिखा, बिना किसी लाइब्रेरी, बिना नोट्स के। ये कैसे मुमकिन हुआ?
ये वाकई हैरान करने वाली बात है। शिविर में रहते हुए, बिना किसी आर्काइव, बिना किसी किताब के सहारे, सिर्फ और सिर्फ अपनी जबरदस्त याददाश्त के बल पर उन्होंने अपनी महान कृति द मेडिटेरेनियन एंड द मेडिटेरेनियन वर्ल्ड इन द एज ऑफ फिलिप II का पहला विस्तृत मसौदा लिखा।
कमाल है।
वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर लिखते थे और किसी तरह उन्हें अपनी पत्नी पॉल तक पहुंचाते थे।
अविश्वसनीय। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो जो एकांत था, वो मुश्किल हालात थे, उसी ने उन्हें लॉन्ग ड्यूरे के विचार को और गहराई से सोचने और समझने में मदद की? शायद रोजमर्रा की जो घटनाएं थी, उनसे कटकर वो इतिहास की उस धीमी गति को ज्यादा साफ तौर पर देख पाए।
ये बहुत संभव है। घटनाओं के शोर से दूर उन्हें शायद उन स्थायी संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला जो युद्ध और राजनीति की उथल पुथल के नीचे लगातार मौजूद थीं। ये अनुभव उनकी सोच का, उनके नजरिए का एक अभिन्न अंग बन गया।
युद्ध खत्म होने के बाद तो उनका अकेडमिक करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ा होगा।
बिल्कुल। वो फ्रांस के बौद्धिक जीवन के एकदम केंद्र में आ गए। 1946 में फेवरे के बाद वे अनाल्स पत्रिका के संपादक बने। उन्होंने एकॉल प्रैक्टिक दे ओट्स एच्यूड्स, जो बाद में EHESS बनी, के मशहूर छठे सेक्शन का नेतृत्व संभाला और उसे सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। 1962 में उन्हें कॉलेज डे फ्रांस जैसी प्रतिष्ठित संस्था में चेयर मिली और 1984 में, अपनी मृत्यु से ठीक एक साल पहले, उन्हें एकेडमी फ्रांसिस के लिए चुना गया, जो फ्रांस का सर्वोच्च अकादमिक सम्मान माना जाता है।
तो हमने लॉन्ग ड्यूरे की बात तो की, क्या उनके कुछ और मुख्य विचार थे जिन्होंने इतिहास लेखन पर इतना गहरा असर डाला? आपने समग्र इतिहास का जिक्र किया था शुरू में।
हाँ, समग्र इतिहास का विचार, ये एनल स्कूल की ही देन था, लेकिन ब्रॉडल ने इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि इतिहास को समझने के लिए हमें कई विषयों को एक साथ लाना होगा। भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, यहाँ तक कि जीव विज्ञान भी। इतिहास किसी एक डिसिप्लिन की जागीर नहीं है।
और उन्होंने इतिहास को समझने के लिए एक ढांचा भी दिया था ना, वो 3 स्तरों वाला मॉडल।
हाँ, सही कहा, ये उनके विश्लेषण का एक बहुत महत्वपूर्ण टूल था। उन्होंने इतिहास के समय को 3 अलग-अलग गतियों या स्तरों में बांटा। पहला, संरचना, स्ट्रक्चर। ये है लॉन्ग ड्यूरे, सबसे धीमी गति, लगभग अचल। इसमें भूगोल, जलवायु, गहरी मानसिकताएं आती हैं। ये सदियों या हजारों साल तक चलती हैं।
ठीक है।
दूसरा, संयोजन, कंजंक्चर। ये मध्यम गति है। इसमें सामाजिक और आर्थिक चक्र आते हैं, जैसे व्यापार का उतार चढ़ाव, जनसंख्या का बढ़ना या घटना, चीजों की कीमतों का बदलना। ये दशकों या 1-2 सदियों के पैमाने पर बदलते हैं। और तीसरा घटना, इवेंट। ये सबसे तेज गति है। यही पारंपरिक इतिहास का क्षेत्र है। राजनीतिक घटनाएं, युद्ध, संधियां, किसी खास व्यक्ति के काम। ब्रॉडेल के लिए ये जरूरी तो थे, पर ये सिर्फ सतह की हलचल थे। लहरों पर झाग, या जैसा उन्होंने कहा, इतिहास की धूल मात्र थे। असली कहानी नीचे की 2 परतों में छिपी थी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी एक घटना को, मान लीजिए किसी युद्ध को समझना है, तो हमें उसके पीछे के आर्थिक सामाजिक चक्रों को देखना होगा, और उससे भी पीछे की भौगोलिक और मानसिक संरचनाओं को भी समझना होगा। ये तो इतिहास को बहुत बहुत व्यापक बना देता है।
निश्चित तौर पर। और इसी व्यापकता में एक और बहुत जरूरी चीज थी, भौतिक संस्कृति, मटेरियल कल्चर पर उनका जोर।
भौतिक संस्कृति मतलब?
मतलब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें, वो क्या खाते पीते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, कौन से औजार इस्तेमाल करते हैं, यातायात के क्या साधन हैं। ब्रॉडेल ने कहा कि हमें इन सब चीजों का अध्ययन करना होगा। इतिहास सिर्फ महलों और संसदों में नहीं लिखा जाता, वो रसोई और खेतों में भी बनता है। इन बुनियादी चीजों को समझे बिना हम बड़े आर्थिक और सामाजिक बदलावों को नहीं समझ सकते।
ये तो बहुत ही जमीनी, बहुत ही वास्तविक बात लगती है। अच्छा, और उनकी एक और अवधारणा थी विश्व अर्थव्यवस्थाएं, वर्ल्ड इकोनॉमीज।
हाँ,
इसका क्या मतलब था?
हाँ, ये भी एक बहुत प्रभावशाली विचार था। ब्रॉडेल ने तर्क दिया कि इतिहास में अलग अलग समय पर ऐसी बड़ी आर्थिक प्रणालियां मौजूद रही हैं जो एक तरह से आत्मनिर्भर थीं। हर विश्व अर्थव्यवस्था का अपना एक भौगोलिक केंद्र होता था, जैसे कभी वेनिस, कभी एम्स्टर्डम, कभी लंदन। फिर एक मध्यवर्ती क्षेत्र होता था और एक बहुत बड़ा बाहरी परिधीय इलाका।
अच्छा।
और इन क्षेत्रों के बीच असमान आर्थिक संबंध होते थे, केंद्र परिधि का शोषण करता था। ये विचार बाद में वैश्वीकरण और ग्लोबल नॉर्थ साउथ की जो असमानता है उसे समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ।
चलिए अब उनकी किताबों पर आते हैं। द मेडिटेरेनियन का जिक्र तो हमने किया, उसकी सबसे खास बात क्या थी जिसने उसे इतना क्रांतिकारी बना दिया?
1949 में जब ला मेडिटेरेनियन एलुमोंदो मेडिटेरेनिया अलेपोक द फिलिप टू छपी, तो वो अपने आप में एक घोषणा पत्र जैसी थी। उसकी संरचना ही क्रांतिकारी थी, जो उनके उस 3-स्तरीय मॉडल को साफ दिखाती थी। पहला और सबसे बड़ा हिस्सा पूरी तरह से लॉन्ग ड्यूरे पर था। भूमध्य सागर का पर्यावरण, उसका ज्योग्राफी, जलवायु, पहाड़, द्वीप, समंदर। दूसरा हिस्सा सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं, कंजंक्चर पर था, व्यापार के रास्ते, शहर, साम्राज्य। और केवल आखिरी सबसे छोटा हिस्सा
फिलिप द्वितीय और उस समय की घटनाओं पर था।
हाँ, 16वीं सदी के स्पेन के ताकतवर राजा फिलिप द्वितीय और उस दौर की राजनीतिक घटनाओं, इवेंट। और ब्रॉडेल ने जानबूझकर उन्हें सबसे कम जगह दी, उन्हें लगभग झाग कहकर खारिज सा कर दिया।
ये तो पारंपरिक इतिहास लिखने के तरीके को एकदम उलट देना हुआ। राजा को ही हाशिए पर डाल दिया, कमाल है। और उनकी दूसरी बड़ी किताब कौन सी थी?
वो थी उनकी 3 खंडों वाली विशाल कृति, सिविलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म, 15th to 18th century, सिविलाइजेशन मटेरियल, इकोनॉमी ए कैपिटलिज्म, 15वीं से 18वीं शताब्दी। ये 1967 से 1979 के बीच प्रकाशित हुई। ये 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच जो आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था उभर रही थी, उसका एक तरह से महाकाव्यात्मक वर्णन है।
3 खंड, इसमें क्या था खास?
पहला खंड, जिसका नाम था द स्ट्रक्चर्स ऑफ एवरीडे लाइफ, ले स्ट्रक्चर्स द कोटिडियन, वो पूरी तरह से भौतिक संस्कृति पर केंद्रित है। दुनिया भर में लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, कौन सी तकनीक इस्तेमाल करते थे, इसका एक विश्वकोश जैसा अद्भुत अध्ययन है। ये दिखाता है कि बड़ी बड़ी आर्थिक व्यवस्थाओं की नींव इन्हीं रोजमर्रा की चीजों पर टिकी है।
ये तो पहले खंड की बात हुई, बाकी दो में क्या था?
दूसरा खंड द व्हील्स ऑफ कॉमर्स, ले जो दे लिशांज, वो स्थानीय बाजारों से लेकर बड़े व्यापारिक नेटवर्क तक, यानी जिसे हम बाजार अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, उसके कामकाज को देखता है। और तीसरा खंड द पर्स्पेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड, लुतों द मूंद, उन बड़ी विश्व अर्थव्यवस्थाओं और पूंजीवाद के सबसे ऊपरी स्तर का विश्लेषण करता है।
अच्छा, पूंजीवाद का विश्लेषण।
हाँ, और यहाँ ब्रॉडल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा अलग तर्क है। वो कहते हैं कि पूंजीवाद पूरी अर्थव्यवस्था नहीं है, ये बाजार अर्थव्यवस्था के ऊपर बैठी एक खास, अक्सर एकाधिकारवादी मोनोपोलिस्टिक परत है। ये बड़े खिलाड़ियों का, बड़े पैसे वालों का खेल है। ये विचार मार्क्सवादी और उदारवादी दोनों तरह के पूंजीवाद के सिद्धांतों से अलग था।
मतलब पूंजीवाद सिर्फ एक ऊपरी सतह है जिसके नीचे बाजार अर्थव्यवस्था और भौतिक जीवन की विशाल गहरी संरचनाएं हैं। ये तो पूंजीवाद को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करता है। क्या उनकी कोई और महत्वपूर्ण रचना भी थी?
उनकी आखिरी बड़ी परियोजना थी द आइडेंटिटी ऑफ फ्रांस। ये उनकी मृत्यु के बाद अधूरी ही प्रकाशित हो पाई। इसमें उन्होंने अपनी जानी पहचानी पद्धति का इस्तेमाल अपने ही देश फ्रांस की गहरी स्थायी पहचान को समझने के लिए किया। इसमें उन्होंने भूगोल और लंबी अवधि की जनसांख्यिकी पर खास जोर दिया।
तो ब्रॉडल का असर सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा होगा, जाहिर है।
बिल्कुल नहीं, उनका प्रभाव वैश्विक था, ग्लोबल था। उन्होंने इतिहासकारों की पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया, खासकर एनाल्स स्कूल से जुड़े लोगों को, जैसे इमैनुअल लेरॉय लदूरी, जॉर्जिस डूबी। लेकिन उनका असर इतिहास के बाहर भी गया। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान जैसे विषयों पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा।
हाँ, आपने पहले इमैनुअल वॉलरस्टीन के विश्व प्रणाली सिद्धांत का जिक्र किया था, ये कैसे ब्रॉडल से जुड़ा है?
वॉलरस्टीन ने तो सीधे तौर पर ब्रॉडल के विश्व अर्थव्यवस्थाओं के विचार को अपनाया और उसे आगे बढ़ाया। हालांकि जहां ब्रॉडल ज्यादातर वर्णन और विश्लेषण पर ध्यान देते थे, वॉलरस्टीन ने उसे एक ज्यादा व्यवस्थित सिद्धांत का रूप दिया, जिसमें केंद्र, अर्धपरिधि और परिधि के बीच के शोषणकारी संबंधों पर ज्यादा जोर था। लेकिन जो मूल प्रेरणा थी वो ब्रॉडल से ही आई थी। अमेरिका में बिंगमटन विश्वविद्यालय में फर्नांड ब्रॉडल सेंटर का होना भी उनके इस अंतःविषयी प्रभाव का एक बड़ा सबूत है।
लेकिन क्या उनके काम की आलोचना भी हुई? जैसे क्या उन पर ये आरोप लगा कि वो भूगोल को कुछ ज्यादा ही महत्व देते हैं, जिसे भौगोलिक नियतिवाद कहते हैं?
हाँ, ये एक आम आलोचना रही है कि वो कभी कभी ऐसा आभास देते हैं मानो भूगोल ही सब कुछ तय कर देता है और इंसान की एजेंसी, उसकी भूमिका कम हो जाती है। कुछ मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भी उनकी आलोचना की। उनका कहना था कि ब्रॉडल वर्ग संघर्ष, सामाजिक विद्रोह और उत्पादन के तरीकों पर उतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि उनका वो जो तीन स्तरीय मॉडल है, संरचना, संयोजन, घटना, वो थोड़ा ज्यादा सख्त है और असल जिंदगी में ये तीनों स्तर इतने साफ तौर पर अलग नहीं होते, आपस में घुले मिले होते हैं।
इन आलोचनाओं के बावजूद क्या आपको लगता है कि आज के जमाने में, आज की दुनिया में ब्रॉडल प्रासंगिक है? उनकी बातें मायने रखती हैं?
मेरे ख्याल से तो आज वो पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। जरा सोचिए, हम आज किस युग में जी रहे हैं। वैश्वीकरण का युग है, जलवायु परिवर्तन एक बड़ी हकीकत है, हमारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं कितनी जटिल हैं। इन सब चीजों को समझने के लिए ब्रॉडल का नजरिया बहुत मददगार है। उनका लंबी अवधि के पर्यावरणीय कारकों पर जोर देना, बड़ी बड़ी आपस में जुड़ी हुई आर्थिक प्रणालियों, उनकी विश्व अर्थव्यवस्थाएं का उनका विश्लेषण, और रोजमर्रा की भौतिक जिंदगी, हमारे खाने पीने, पहने ओढ़ने के पैटर्न, हमारी तकनीक पर निर्भरता की गहरी संरचनाओं को समझने की उनकी कोशिश, ये सब आज की दुनिया को समझने के लिए बेहद जरूरी उपकरण हैं।
ये बात तो सही है। शायद आज की जो तेज रफ्तार खबरें हैं, जो सोशल मीडिया का शोर है, उसके बीच हमें ब्रॉडल की तरह थोड़ा रुक कर उन धीमी गतियों को देखने की जरूरत है जो असल में हमारे भविष्य को आकार दे रही हैं। उनके कुछ मशहूर कथन भी है ना, जो उनकी सोच को बड़ी खूबसूरती से सामने रखते हैं।
हाँ, कई हैं। जैसे एक बहुत मशहूर है, घटनाएं इतिहास की धूल हैं। ये साफ तौर पर उनकी सोच को दिखाता है कि जो तात्कालिक राजनीतिक घटनाएं हैं वो गहरी संरचनाओं की तुलना में क्षणिक और कम महत्वपूर्ण होती हैं।
और लॉन्ग ड्यूरे के बारे में उन्होंने क्या कहा था?
उन्होंने कहा, दीर्घ अवधि एक संरचना है, एक लगभग गतिहीन इतिहास, मनुष्य का उसके पर्यावरण के साथ संबंध का इतिहास। ये उनकी जो केंद्रीय अवधारणा है उसकी एक तरह से स्पष्ट परिभाषा है।
इतिहास की व्यापकता पर भी उनका एक कथन याद आता है।
हाँ, शायद आप इसकी बात कर रहे हैं। इतिहास सभी संभव इतिहासों का योग है, ये उनकी वो जो समग्र इतिहास की प्रतिबद्धता थी उसको दर्शाता है कि इतिहास को केवल राजनीतिक घटनाओं तक सीमित नहीं रखना है।
और पूंजीवाद पर उनका वो खास नजरिया?
हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। पूंजीवाद एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक परत है। ये दिखाता है कि वे इसे पूरी आर्थिक संरचना के ऊपर सिर्फ एक ऊपरी स्तर मानते थे, न कि पूरी व्यवस्था।
तो अगर हमें संक्षेप में कहना हो, फर्नान ब्रॉडिल हमें क्या सिखाते हैं, सबसे अहम सीख क्या है?
वो हमें सिखाते हैं कि सतह के नीचे देखें। आज की जो सुर्खियां हैं, जो तात्कालिक संकट दिखते हैं, उनसे परे जाकर उन धीमी, गहरी, अक्सर अदृश्य सी लगने वाली ताकतों को पहचानें जो वास्तव में हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं। चाहे वो भूगोल हो, जलवायु हो, अर्थव्यवस्था की गहरी संरचनाएं हों, या फिर सदियों से चली आ रही हमारी आदतें और हमारी मानसिकताएं हों, एक तरह से वो हमें ऐतिहासिक धीरज रखना सिखाते हैं।
ये वाकई सोचने वाली बात है। उनका नजरिया हमें वर्तमान को एक ज्यादा गहरी, ज्यादा लंबी ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में रखने में मदद करता है, शॉर्ट टर्म चीजों से हटकर लॉन्ग टर्म देखने में।
बिल्कुल। और ये हमें आज एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज का ये जो हाइपर कनेक्टेड युग है, जहां हर चीज इतनी तेजी से बदल रही है, जहां सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है, ऐसे में अगर हम ब्रॉडल की तरह दीर्घ अवधि पर, उन धीमी संरचनाओं पर ज्यादा ध्यान दें, तो क्या हमारी बड़ी चुनौतियों को, जैसे जलवायु परिवर्तन है या वैश्विक असमानता है या भविष्य की महामारियां हो सकती हैं, उनको समझने और उनसे निपटने का हमारा तरीका बदल सकता है? शायद हमें आज ब्रॉडल को पढ़ने की पहले से भी ज्यादा जरूरत है।
निश्चित रूप से ये एक विचारणीय बिंदु है। इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फर्नान ब्रॉडल की दुनिया में यह यात्रा वाकई आंखें खोलने वाली रही।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।